की प्रत्यक्षता होती जाएगी, वो बच्चे उस पढ़ाई में लगते जाएंगे। लौकिक दुनिया के धंधे दोरी, उनके लिए क्या बोला मुरली में, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो ऐसा भी टाइम आएगा कि सबको इन धंधे दोरी से बुद्धियोग हट जाएगा और एक ही धंधे में सब बच्चे लग पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
नवंबर 17 क्या है मीठे बच्चे, आपस में रूठकर पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप बच्चे बैठे हैं दिल में लिखे हैं कि बेहद का बाप आया, बेहद का बरसा देते और तुम सन्मुख बैठे हो। बेहद सुख शांति का वर्षा लेने वाले हैं, मुक्ति की शांति का वर्षा लेने वाले हैं, वो सन्मुख बैठे हैं। जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है, अभी कहा सन्मुख बैठे हैं। वाणी चलाई जा रही थी ब्रह्मा की मुख से, समय कहा सन्मुख बैठे हैं, बोला जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। वह करके दूर क्यों बोल दिया, भविष्य में आने वाले बाप के पार्टी की तरफ इशारा दिया, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है, भविष्य के लिए जब इशारा दिया तो ऐसे क्यों कहा तुम सन्मुख बैठे हो। सन्मुख कैसे बैठे हो, किसके सन्मुख बैठे हो, जिसने बोला तुम सन्मुख बैठे हो ईश्वर की तरफ से बोला, बोला हुआ सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझाए कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं, समझाते किस शरीर द्वारा है, इस शरीर द्वारा, ये समाना ब्रह्मा के शरीर के द्वारा है और कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और फिर वर्षा देते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले समझाते हैं फिर वर्षा देते हैं और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है, पांच तत्वों को भूत कहा जाता है, तो पांच तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। बल माया बहुत बिगड़ जाती है परंतु हराना नहीं, सिवाय एक बाबा दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए, क्यों तुम्हें तो शिव बाप आया हुआ था, जिस तन में शिव बाप आया हुआ है उसके साथ लव कैसे नहीं होगा। आत्मा बिगड़ शरीर की तो जड़बत होती है, शरीर में आती है तो चैतन्य के लिए जाती है। सुप्रीम सोल बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया तो उसके साथ लव कैसे नहीं होगा, या तो आएगा ना, नहीं होना चाहिए, ये क्यों कहा। हाँ हाँ बोलो, जब सीखेंगे कि करना है तो लव क्यों नहीं होगा? लव नहीं होना चाहिए, हाँ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो टेम्पररी रस। दो तरह के रस की बात हो रही थी, टेम्पररी रस और मुकर्रर रस। अर्थात जो अंत तक चले, टेम्पररी अर्थात जो बीच में आए बीच में ही चला जाए। शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए, कोई भी शरीर के साथ लव नहीं रखो, लव रखा तो अटक पड़ेगी। क्यों अटक पड़ेगी? तो जो भी विलासी शरीर है अगर उसमें लव रखा तो माया का अटकाव। बाबा जानते हैं बहुत सीधे सीधे आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप से फट पड़ती, इतनी प्रीति लग जाती है जो शिव बाबा को भी भूल जाते। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है, जैसे आज कितने भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भले ज्ञान भी उठा लेगी परंतु अवश्य कटकुर होती। योग से जो विकर्म विनाश हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां अटैचमेंट होगा वो वाइब्रेशन जरूर काम करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा उनका नाम नहीं लेते, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। वन ब्राह्मण से न बने तो भी बाबा को डायरेक्ट पसंद नहीं करते, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण से परमिशन लेकर के ही बाबा को लेटर लिखना है या ब्राह्मण से थ्रू ही पोस्ट करवाना है। बाबा को डायरेक्ट पत्र भी लिख सकते हो, पर कोई काम से दिल हट जाती है ब्राह्मण से, परंतु पढ़ाई जरूर पड़ती है। बाबा को समाचार देते रहना है, आखिरी बाबा मतभेद मिटा देंगे। इसके साथ ब्राह्मण के साथ जो भी मतभेद है अगर बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहे तो आखिरी वो मतभेद जरूर मिटाए। मतभेद के कारण बहुत बच्चे खाना खराब कर लेते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़ देनी चाहिए, ऐसे बहुत गिर पड़ते ऐसे तो पढ़ाई को छोड़ देते। ब्राह्मण से अनबन हो जाएगी तो पढ़ाई कैसे पढ़ेगी? बाबा की वाणी से त्याग जरूर करना है, बाबा की मुरली जरूर पढ़ना है कोई भी हालत में। बाबा का हमेशा कहना है कि कोई भी तकलीफ है, ब्राह्मणी की चिपट है तो बाबा को पत्र लिख, और बाबा भी विधायक पत्र बच्चों को भेज सकते हैं। तीसरी बात, तुमको कोई से भी धर्मोई जनमोई की बातें सुनती नहीं क्या होता है? हाँ व्यक्तिगत एक दूसरे से किसी की लड़ाई है, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, प्लानिंग करता है या करती है, तो उन व्यक्तिगत बातों में नहीं जाते। एक बात की बात फिर भी बच्चों को सावधान करते हैं, बहुत है जो देहरिमान की बीमारी में रोगी हो बच्चे, बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते रहो, उसकी ही महिमा करते रहो। जो बाबा से कभी भी पति दुनिया को पावन से जाए बना नहीं है, ये भी तुम ही जानते हो। कई बच्चे हैं जो आज बीमार से पत्र नहीं लिखते, क्योंकि तो बाप को अगर बच्चा चिट्ठी न लिखे तो बाप को फिक्र हो जाता है पता नहीं क्या बात है। बाप को भी ख्याल रहता है क्योंकि बाबा जानते हैं माया बड़ी दुस्तर है, कहां बच्चों को मार्ग में डालें। अपने धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम उसमें ऐसे फंसते हैं जैसे आज को मारते हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब जीवन माया डाल कोई की तकदीर में नहीं है, तो कितना भी बाबा समझाए कि बाहियात बातें न करो फिर भी करते रहते, कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बना ली जगह। अज्ञान कारण की जीवन कहानी आदि से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, हमको बाबा की सिवाय किसी को याद नहीं करना। जीवन कहानी भी अगर बनाए तो किसकी, वो भी लोग तो दुनिया की नहीं, नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उन्होंने कुछ कर दिया रखा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ जाएगी, जब तक शिव बाबा के योग नहीं है तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस भी नहीं कर सकते, कब होगी। जो बाबा से प्रीति बुद्धि होंगे तो सर्विस भी होगी, और जो बाबा से प्रीति बुद्धि कब होंगे, जब जो बाबा को पहचाना होगा तो प्रीति बुद्धि भी होंगे, पहचाना ही नहीं होगा तो प्रीति बुद्धि भी नहीं हो सकती, और प्रीति बुद्धि नहीं हो सकते तो सर्विस भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा सावधान कर देते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा कुछ को कभी सोना कला संपूर्ण तो नहीं बने। कोई बच्चे भी हैं जो कच्चे हैं, भूले करते ही रहेंगे, सेंसिबल बच्चे जो हैं वो फट से समझ आते हैं। अगर अगर कोई मतभेद होता है तो ये नहीं उस मतभेद को छुपाए लेते, वो बच्चे कैसे हो गए, मतभेद को बाबा के पास पहुंचाना है, फट समाचार लीजिए। कुछ देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, दिल हट जाती है तो फिर घर बैठ जाती है। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ, तब क्या करना चाहिए है? अगर ब्राह्मणी कह रहे तुम इस सेंटर पर मत आओ तो क्या करना चाहिए, कह रहे थे वो नमन। अगर यही बात उसकी बुद्धि हो जो बाबा का नहीं करे तो मना ही क्यों करे, तब क्या करना चाहिए। अरे तो बताया डायरेक्ट बाबा को पत्र पत्र लिखो, बाबा को सभी समाचार देना चाहिए, बाबा खुश होगा कि बच्चा सभी समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5,000 वर्ष पहले भी दिया था, ये लक्ष्मीनारायण किसी से खड़े हैं इनको वर्षा दिया था, बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इंतकाल जिस तक सोती है तो कौन समाचार देना चाहिए, सब संपूर्ण तो नहीं बने, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, क्या बच्चे कौन जो बाप की बात माने, बाप की डायरेक्शन को फॉलो करें, बच्चे तो ब्रह्मा मुख के हैं ना, तो ब्रह्मा मुख से जो भी डायरेक्शन निकलते हैं उनको तुरंत फॉलो करना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बहुत बच्चे तो मुझे जानते ही नहीं है उनके सपुख कैसे हुआ, क्या सपुख होगा अभी है पांव की दुनिया में हमको तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में आधारभूत और विष्णु उपासनाओं में आधारभूत और विष्णु नहीं होंगे उनमें भी दो छेड़े होते एक नास्तिक वर्ग जो बाइबल को भी नहीं मानता गिरजाघरों को नहीं मानता और दूसरा वो जो बाइबल को मानते हैं गिरजाघरों में जाते हैं भी होते हैं तो ये दोनों किसके नगर मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं इतनी ताकत है इन्होंने परंतु ये ला नहीं एक कहानी भी है दो मिलों की कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए मेहनत तो जरूर पड़ेगी वहां से मेहनत पढ़ाई को छोड़वाने वाले मेहनत भी पड़ेगी ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि हमारे सेंटर में मत आओ तो मेहनत तो पड़ गया ना पढ़ाई लेकिन बाबा क्या कहते हैं डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन करो पढ़ाई ना तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए माया ऐसी है जो माथा मुड़ लेती और हाथ नहीं करती ये बात कहते हैं और सब बातों को छोड़ मां नहीं कभी आती बीज को याद करने से धान की याद आ जाए ज्यादा कौन है बीज है राम बाबू हाँ प्रजा पिता जिनको बीज नहीं कहेंगे झाड़ पर जिनको कहा जाता है क्रिएटर जीव ज्योति विष्णु क्रिएट थोड़े ही किया जाता है तो है विष्णु को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा क्योंकि बीच में सारा झाड़ समाया हुआ है कौन सा झाड़ मनुष्य शक्ति का झाड़ रक्त विभाग में रहते ये कोष उठाओ कौन सा कोष है ये कौन सा बीज है और उस बीज में कैसे कैसे झाड़ सारा समाया हुआ है ये कौन सा कोष हुआ जो ग्रस्त व्यवहार वाले उठा सकते हैं एडवांस जो सन्यासी है उनकी बुद्धि में ये कोर्स बैठेगा नहीं भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं आरती में कोठियां बनी हुई है हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं जानते बहुत खतरनाक है। इन सबको छोड़ो, इनसे बुद्धि का अटैचमेंट न लगाओ। अगर इनसे बुद्धि का अटैचमेंट लगाया तो ये क्या करेंगे? तुम्हारा भी हार्ट फेल, हार्ट फेल करेंगे। ये हार्ट फेल की बात आई ना। इन सबको छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए। विष्णु का, शंकर का, शंकर का खिलौना बनाए, बैठ उसकी पूजा करते थे, जानते किसी को भी नहीं, और पूजा में खर्चा भी बहुत करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको श्रृंगारते रहते हैं, सांपार तो जेवर भी पहनाते हैं, करते हैं। पत्थर की जड़मूर्ति कहो या ट्रांसलाइट की जड़मूर्ति कहो, वो जड़मूर्ति नहीं है क्या? साहूकार तो जेवर भी पहनाते, ये तो तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे ही देते। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई संतान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं, तो राजा ही घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो किसी को है नहीं, किस दुनिया में? द्वापर कली की जो दुनिया है इसमें सदा के लिए किसी को सुख नहीं हो सकता, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते हैं। कौन सी दुनिया की? जो द्वापर की कली की दुनिया है इस धर्मभंगुर सुख को मानते नहीं है, कार निष्ठा के समान समझते। वो राज्य को कैसे सिखलाएंगे? बोला सन्यासी इस सुख को मानते नहीं है इस दुनिया के, इस दुनिया के सुख को मानते नहीं है, कार निष्ठा के समान समझते। काग की निष्ठा होती है, कौआ क्या खाता है? रस खाता है। माना मनुष्य जो कुछ खाते हैं उसका रस मनुष्य के अंदर चला गया। अब जो कुछ कचरा बचा वो कौए ने खा लिया, और कौए के खाए हुए में से जो निकला बाद में बचा हुआ वो उसकी निष्ठा कही जाती है। जो कुछ निचोड़ रह गया वो कौए ने खा लिया। कौआ जो हुआ वो लास्ट में बचा कुचा खाता है। आज हमारी गवर्नमेंट कब आती है? लास्ट में आती है या बीच में या पहले? लास्ट। तो कौन सा सुख खाते हैं? राजा का कौन सा सुख खाते हैं? लास्ट में बचा हुआ काग मिश्रा समान सुख खाते हैं। तो इस सुख में कुछ रखा नहीं है तो राजू कैसे निकलाएंगे? कौन सन्यासी लोग राजू कैसे निकलाएंगे? उनकी बुद्धि में तो बैठ गया,
पाते ही रहते हैं। उसको फिर से थोड़े जाएंगे, फिर से माना दोबारा। इसका मतलब यह है कि आज में भी आया था पाप बीज आया था, उसमें सुप्रीम सोल भी आया था, और कराची में सैंपल बनाया था पाकिस्तान, ना पाकिस्तान नहीं बनाया था वो, वहाँ कराची में जो सत्संग भवन था वो पाकिस्तान था। जबकि बुद्धि एक में लगी हुई थी, अनेकों से उनकी बुद्धि निकल चुकी थी। तो मैं फिर से आया तुमको राजीव सिखाने, कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। इनका नाम स्मरक है, कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। दूसरी बुढ़ियों में क्या कहते हैं? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। ऐसे क्यों बोलते? बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में मैंने प्रवेश किया। वो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब प्रवेश किया था वो तो बाद में प्रवेश हुआ, लेकिन उससे भी पहले 1947 में मुरलियाँ चलना शुरू हुई है, तब से साबित होता है कि ब्रह्मा में प्रवेश किया। लेकिन उससे भी पहले जब संस्कृत की गीता के अर्थ पैठ सुनाते थे, शिवबाप प्रवेश कर चुके थे 1936 में भी, तो जिसमें प्रवेश किया था रामबाप की सोल में या प्रजापिता ने, वो व्यक्तित्व जाकर के 1976 में 100 साल उसकी पूरी होती, 60 साल में वान का सबक था, 1936 में वान का सबक था, 60 साल उसमें जोड़े गए तो 1976 में आकर के 100 साल पूरे होते। तो अंत क्या भाई, अंत का पीरियड कौन सा हुआ है? चौरासीवा जन्म और उसके अंत के भी अंत में, तो वो अंत कौन हुआ? वो 1976 जाकर के अंत हुआ, तब मैं प्रवेश करता हूँ। तो बोला बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझाए रहे, यहाँ समझाने वाला कौन बताया? बाप। और सन्मुख समझाए रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ, पहले भी आया था, पहले मैंने कब आया था? यदि के आज में भी आया था, अभी फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखाने। कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। कृष्ण का जन्म पहला सतयुग, फिर आखिरी जन्म कलयुग के अंत में। तो जब प्रवेश किया तो उस समय कितना था, कौन सी कृष्ण की बात हुई, शास्त्रों में कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग के कृष्ण की बात है या संगमी की कृष्ण की बात है? वो तो संगमी की कृष्ण की बात था, शास्त्रों में तो जो भी बातें हैं वो सतयुग त्रेता की तो है ही नहीं। तो संगमी की कृष्ण जो है वो तो कहा ही तब जाता है जबकि रामकृष्ण की आत्माएं दोनों इकट्ठी हो जाती है। राम की आत्मा और चंद्रमा के रूप में कृष्ण की सोल, दोनों एक ही तन में इकट्ठी होती है तब कहा जाता है कृष्ण। तो बोला कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। कितने कितने चाहिए, एक चाहिए या दो चाहिए है? मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। तो कितने हुए, दो ब्रह्मा हो गए, एक सिर्फ ब्रह्मा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे? एक सिर्फ ब्रह्मा कौन? दादा देखराज को कहेंगे सिर्फ ब्रह्मा, उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा की बुद्धि में जब संत में ये बात आ गई कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्ति था वही हीरा था, तो बाबा ने जो पुराने चार चित्र बनवाए थे साक्षात्कार के, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड करवाया। झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, और त्रिमूर्ति के चित्र में ध्यान से देखो, इसमें ब्रह्मा कुमारी इसी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है प्रजापिता शब्द नहीं, क्योंकि ये चित्र जो है वो 65 से पहले ही सब 60-61 से बनवाई गई। उस समय बाबा की बुद्धि में प्रजापिता की बात नहीं आई, लेकिन 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मम्मा तो यज्ञ की कंट्रोलर थी, बाबा को संभालती थी, यज्ञ को संभालती थी, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा को पता चल गया इस यज्ञ में सारे भी छुपे हैं। हीरा जो था वो यज्ञ के आज नहीं था, वो पिता की बात बुद्धि में बैठ गई, जिससे बाबा को ज्ञान के साक्षात्कारों का रहस्य पता चला था, ज्ञान के बीज का पता चला था। तो बाबा ने इन चित्रों में सभी में और जितने भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम थे उन सबके बोर्ड में प्रजापिता शब्द ऐड करवाया, उससे पहले प्रजापिता शब्द नहीं था। ये छोटी छोटी बुकलेट छपी हुई है उनमें देखा जा सकता है, इन चित्रों में भी ये सामने के लिए में देखा जा सकता है कि त्रिमूर्ति और झाड़ का जो चित्र पहले छपा था 65-66 से पहले, उसमें प्रजापिता शब्द नहीं, और जो लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र जो 65-66 के समय बनाया गया है उसमें अपने पिता से ऐड हुआ पड़ा है। तो ये बताया कि मुझे ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके मैं आऊं, नहीं तो कैसे आऊं, ये मेरा मुकर्रर रथ है। कौन सा? जो लास्ट में बोला प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं, लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना आएगी नहीं। ब्राह्मणों की स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा हो गई, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा उसको क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा, उसकी बात हो रही है। अभी लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा? 69 में तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, विष्णुपुरी कहाँ बनी? जब ये बात पूछी गई दीदी दादियों से तो उन्होंने कहा कि दीदी है लक्ष्मी और कुमार का दादी है नारायण। तो ये तो मेल फीमेल की पहले तो बात नहीं हो सकती, और अगर बनती भी है तो दीदी ने पहले शरीर छोड़ दिया। तो लक्ष्मी नारायण क्या विधवा विदुर होते हैं? वहां तो विधवा और विदुर कोई बनता ही। तो लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी। तो जरूर कोई ब्रह्मा है ना जिसके द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी माना लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाए। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे, अभी तुम, यह नहीं। कौन बोल रहा है? सिविती सोल बोल रही है। किसके बाजू में बैठ करके बोल रही है? ब्रह्मा के बाजू में बैठ करके बोल रही है। तुम अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रही हो। तुम माने कौन ना? जिन बच्चों को इमर्ज करके बाबा बात करते हैं। मुझे बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, उनसे बात नहीं करता हूँ। बात किससे करता हूँ? तुम बच्चों से। तो जिन बच्चों से बात की जाती है वही तो कार्य को संपन्न करने वाले हैं। विष्णुपुरी की स्थापना का कार्य संपन्न होना, इसलिए बोला अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं है। क्या कहा? तुम सन्मुख बैठने वाले बच्चे समझते हो, जो प्रजापिता के सन्मुख बैठ करके, प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते होंगे वो तुम बच्चे समझते हो, बाकी कोई इस बात को समझते नहीं है कि परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है। क्या पार्ट है? कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बात है ना। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, तो प्रैक्टिकल में जन्म हुआ होगा ना कृष्ण का, नहीं तो कैसे मनाते हैं? अब कृष्ण का जब प्रैक्टिकल में जन्म हुआ होगा तो उनकी जयंती मनाने वाले भी कोई हुए होंगे जिन्होंने वो उत्सव मनाया होगा। कौन? माँ बाप ही तो बनाते हैं। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ प्रैक्टिकल में तो उनके माँ बाप भी कोई हुए होंगे। तो तुम भारत को विष्णुपुरी बनाए रहे हो, दूसरे कोई इन बातों को समझते नहीं है कि परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बात है ना? जो ब्राह्मण वन पूरा पुरुषार्थ करेंगे बनेंगे। कौन बनेंगे? जो ब्राह्मण बन के पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो क्या बनेंगे? देवता बने। माने इसी जन्म में बनेंगे कि अगले जन्म में बनेंगे? ब्राह्मण ही तो देवता बनेंगे, नर से नर डायरेक्ट। गायन है कि परमपिता परमात्मा तीन धर्म, कौन कौन से तीन धर्म? ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता और चंद्रवंशी देवता, तीन धर्म स्थापन करते हैं। कौन? कौन करते हैं? है? परम पिता परमात्मा। तो 69 में ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उस समय कितने धर्म स्थापन हुए? है? एक धर्म स्थापन हुआ, वो भी ब्राह्मण उनको द्विज नहीं कह सकते। क्यों? दो जन्म जिसके होते हैं उसको कहते हैं द्विज। उन्होंने उसका अर्थ ये समझा दिया, एक लौकिक जन्म लौकिक बाप से मिला हुआ और दूसरा ब्रह्मा से मिला हुआ दूसरा जन्म। लेकिन ये बात नहीं, असली बात क्या है? एक ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा मिला हुआ जन्म बेसिक नॉलेज पर, और दूसरा एडवांस नॉलेज में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ जन्म। क्योंकि जब तक द्विज न बने, जलेऊ को धारण न करे यज्ञ पवित्र को, तब तक तीन सूत्रों का ज्ञान नहीं मिल सकता। जब मिलेगा ही नहीं तो तीन सूत्रों को धारण कैसे करेगा? तीन सूत्र कौन से? एक ब्रह्मा का सूत्र ज्ञान सूत्र, एक शंकर का ज्ञान सूत्र, और तीसरा विष्णु का ज्ञान सूत्र। ये तीनों ज्ञान के सूत्र जिसकी बुद्धि में धारण हुए पड़े होंगे, वही प्रैक्टिकल जीवन में उनको धारणा बना करके दिखा सकता है। तो तीन धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर। ब्रह्मा के द्वारा तीन धर्म स्थापन नहीं हुए, 69 में सिर्फ अधूरा एक ब्राह्मण धर्म कहेंगे, अधूरे ब्राह्मण बने, उनका यज्ञों पर भी तो नहीं हुआ। मानो उनकी बुद्धि में ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रैक्टिकल ज्ञान धारण नहीं हुआ। ब्रह्मा कौन? जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है, देवता धर्म की स्थापना होती है, राजधानी की स्थापना होती है, वो ब्रह्मा कौन? शंकर कौन? जिसके द्वारा ऐसे पुरानी सृष्टि का विनाश होता है, पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि का भी विनाश होता है और सारी सृष्टि का भी विनाश होता है। जिसके द्वारा? शंकर के द्वारा। हर हर बम बम शब्द क्यों लगा हुआ है? पापों का हरण करने वाले शंकर के साथ बम शब्द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जब इस सृष्टि पर बम छूटेंगे तभी सारी सृष्टि का विनाश होगा, इसलिए उनके नाम के साथ बम शब्द भी लगा हुआ है। और विष्णु, विष्णु के द्वारा जो नया संगठन स्थापन होगा नई दुनिया का, उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि वो विष्णु बनने वाली आत्मा कौन है। प्रैक्टिकल में इस ब्राह्मण परिवार में कौन है वो आत्मा? शंकर का पाठ बजाने वाली वो आत्मा कौन? और ब्रह्मा के रूप में जो माता के रूप में स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, माता द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ। दादा लेखराज को माता थोड़े कहेंगे, उदारी पूछ वाले पुरुष थे, उनके द्वारा मैं स्वर्ग का गेट नहीं खुलवाता हूँ, क्योंकि पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन कह दिया। कोई भी पुरुष हो, राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, उनके द्वारा स्वर्ग की गेट नहीं खुलवाता हूँ, किंतु मैं खुलवाता हूँ माता को। तो कोई माता निमित्त चाहिए जिसमें वो ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज की प्रवेश करके पाठ बजाए। तो तीन धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा तीन मूर्तियों के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण धर्म और दूसरा ब्राह्मण के बाद संपूर्ण ब्राह्मण बने तो क्या बने? देवता बने, देवता बने। और तीसरा जो देवताएं फेल हो जाते हैं, देवत्व से नीचे गिर जाते हैं, वो फिर बनते हैं चंद्रवंशी। देवत्व होना निर्विकारी, जैसे रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड किए जाएंगे ना, तो जो ऐड होने लायक नहीं बनेंगे वो क्या हुए? संपूर्ण ब्राह्मण देवता से नीचे गिर गए ना, तो वो थोड़े देवता बने। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा? ब्राह्मण धर्म। उसके बाद देवता धर्म 16 कला संपूर्ण, और उसके बाद चंद्रवंशी। जो फेल हो जाएंगे वो चंद्रवंशी कम कला वाले बनेंगे। तो वहां दो युगों में एक ही धर्म है। कहां? सतयुग और त्रेता में, वहां तो एक ही धर्म होता है, लेकिन संगम युग में, संगम युग में तीन धर्मों की स्थापना होती है, एक ब्राह्मण धर्म, दूसरा देवता धर्म और तीसरा शक्ति धर्म। बाकी दो युगों में देखो कितने धर्म हो जाते हैं, द्वापर और कलयुग में। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि में कब बैठेगी, किसकी बुद्धि में बैठेंगी, जो गीता पाठ भी सबके ब्राह्मण होंगे। अगर गीता पाठ भी नहीं होंगे, मुरली से प्यार नहीं होगा, तो उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं करती। पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेंगे, जिन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया है उनके लिए भी बैठेगी, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देने वालों में भी नंबर वार होंगे, सब एक बैठे नहीं होते। और जिन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया ही नहीं उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने यह पाप किए, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना। कौन समझाता हूँ, कौन समझाता हूँ, हम क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कहा। समझाने वाली सोच तो शिव की है ना, ब्रह्मा के तन में, लेकिन हम क्यों कहा। माना शिव के साथ ब्रह्मा की सोल भी बच्चों को समझा रही है कि पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना, हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुनी सजा के निमित्त बनना, मेरे बन करके विकार में गए तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी, वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। कौन सी सजाएं, जो दुनिया में सजाएं दी जाती हैं वो भी बहुत कड़ी होती हैं, गर्भ जेल में सजा मिलती है वो भी बहुत कड़ी होती है, और जो पाप धर्मराज के द्वारा सजा मिलेगी वो तो फिर बहुत ही कड़ी सजा होती है। जो पाप किया वो क्या करते हैं, पाप कहते हैं मैं पाप धाम करने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता रहने वाला बाप की शक्ति में आया हुआ है, नीचे आना पड़ता है, दुनिया में आना पड़ता है, सन में आना पड़ता है, सन भी कैसे में आता हूँ, बाकी सन में आता हूँ, बाप सन में आता हूँ, या सन्यासी की पक्ष सन में आता हूँ, या कन्यासी पक्ष सन में आता हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सदगुरु का निंदा कर सूर्यवंशी लगाने में डर, सदगुरु का निंदा छोर न पाल, कहाँ छोर न पाल, कहाँ छोर न पाल, सूर्यवंशी लगाने में नहीं आता, चंद्रवंशी में आ जाएगा, विजय माला का दाना बन जाएगा, ग्राम वंशियों में आ जाएगा, बौद्धि वंशियों में आ जाएगा, किन वंशियों में आ जाएगा, उन्होंने डिनेस्टी में तो जा सकता है, लेकिन सूर्य वंशीय में और नहीं पा रहा, गिर पड़ता बहुत कसम उठाती है, हम आपके सबूत बच्चे होकर के रहेंगे, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, करके लिख करके देते हैं, और पिता परमात्मा की प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बना आपसे पूरा वर्षा होगा। तो माया ऐसी है जो आज है कौन, जो लड़के लिखने लिख करके देने वाले थे वो आज है नहीं, प्रतिज्ञा कर पूरा भविष्य बना तो बहुत धोखा खाए, ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, बाबा इशारे में सब कुछ समझाते हैं, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध कहेगी, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात हो रही है, गफलत नहीं कर, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बाबा से राय लो फिर जवाबदार बाबा हो जाए, पढ़ाई में मनुष्य की मेहनत करती है, इंसान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं, तुम भी आगे चल करके जब समय नजदीक
कोई है, आगे चल करके जितने भी स्वर्ग में आने वाले होंगे 4.5 लाख सबकी बात बताई। ये तो पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है, उसकी क्या विशेषता होती है? पहले जन्म की राजा की जो प्रजा आएगी उसकी क्या विशेषता होगी? वो सभी आत्माएं ज्ञानी ज्ञानी हुआ इतने ज्ञान की चमक मारने वाले सितारे होंगे कि सारे विश्व में चमकेगी। ज्ञान की चमक 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अनुभव करेंगे। तो तुम भी आगे जब जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ने के लग जाते हैं। बच्चे क्लास कर लेते हैं, बाकी नहीं करते
बच्चों को दिमाग से बात अलग याद किया। गुड मॉर्निंग रूहानी बात की, रूहानी बच्चों